एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गोता लगाने वाले हैं जो हमें शायद स्कूल की याद दिला दे, पर जिसका असर आप देखेंगे आज भी हमारी जिंदगी पर है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन ग्रीक और रोमन मिथकों की। हाँ, वही देवताओं, नायकों और अजीबोगरीब राक्षसों की दुनिया।
बिल्कुल, लेकिन देखिए, हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ सुनने सुनाने नहीं आए हैं। हमारा मकसद ज़रा गहरा है। हम हेलेन मोरालेस की किताब है ना, क्लासिकल माइथोलॉजी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ आज भी इतनी ज़रूरी क्यों हैं, इनका असली रोल क्या था समाज में, इनका मकसद क्या था और शायद आज भी क्या है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मतलब पुरानी कहानियाँ भर नहीं है, जैसा मोरालेस बताती भी हैं, ये हमारी सोच, हमारे समाज, हमारी कला, अरे भाई हमारी राजनीति तक पर असर डालती आई हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इन प्राचीन कथाओं में हमारे आज के लिए क्या छिपा है। तो शुरुआत करते हैं लेखिका से। ये हेलेन मोरालेस हैं कौन और इस टॉपिक पर उनकी बात में ऐसा क्या खास है कि हम उन्हें सुने?
देखिए, हेलेन मोरालेस क्लासिक्स की दुनिया में एक काफ़ी जाना माना नाम है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा बारबरा में हेलेनिक स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। उनकी खासियत ये नहीं कि वो सिर्फ कहानियाँ जानती हैं, नहीं, बल्कि वो इन्हें एक अलग बहुत ही पैनी नज़र से दिखती हैं।
अच्छा,
किस तरह की नज़र से? वो इन मिथकों का सिर्फ वर्णन नहीं करती बल्कि उनका सांस्कृतिक विश्लेषण करती हैं। मतलब वो ये सवाल उठाती हैं कि प्राचीन समाज में इन कहानियों का काम क्या था, क्या ये सिर्फ टाइम पास था, इनका मकसद क्या था और समय के साथ लोगों ने इन्हें कैसे लिया, कैसे इस्तेमाल किया। वो जेंडर, सेक्सुअलिटी, पावर डायनामिक्स, इन जैसे आजकल के विचारों के चश्मे से इन पुरानी कहानियों को देखती परखती हैं।
अच्छा, तो वो सिर्फ कहानी नहीं, कहानी के पीछे की कहानी बता रही हैं, उसका सामाजिक रोल क्या था, उसे कैसे समझा गया, और ये जेंडर और पावर पर उनका फोकस, ये तो आज के जमाने में बहुत ही जरूरी लगता है।
बिल्कुल सही कहा अग्नि, यही उनके काम को इतना दिलचस्प और रेलेवेंट बनाता है। वो दिखाती हैं कि कैसे ये मिथक अक्सर मतलब पुरुषों के नज़रिए से घड़े गए थे और महिलाओं के किरदारों को कैसे दिखाया गया, कभी देवी बना दिया, कभी राक्षसी, कभी बेचारी। वो इन कहानियों में छिपी सत्ता की राजनीति को भी खोल कर रखती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये सब मुश्किल बातें भी बहुत साफ, सीधी, सरल भाषा में समझा देती है। इस वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज के लिए एकदम सही है वो।
तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में? क्या ये कोई देवताओं की लिस्ट है या हीरो के कारनामों का कच्चा चिट्ठा?
नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। आप समझिए कि किताब एक तरह से जासूसी नजर से मिथकों को देखती है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि मिथक होते क्या हैं आखिर, समाज में उनका रोल क्या होता है और उनकी जो विरासत है वो आज तक कैसे जिंदा है। ये कहानियों का कलेक्शन नहीं है बल्कि ये एक तरह का टूलकिट है जिससे हम इन कहानियों को समझ सकें, उन पर सवाल उठा सकें। ये किताब हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं, सोचने वाला पाठक बनाती है।
सोचने वाला पाठक, वाह, दिलचस्प है। तो ये टूलकिट हमें कहाँ ले जाता है? किताब का सफर कैसा है?
सफर शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। मिथक कहते किसको है? क्या ये बस झूठी मनगढ़ंत बातें हैं? मोरालेस कहती हैं नहीं, वो इन्हें कहती हैं सामाजिक रूप से शक्तिशाली पारंपरिक कहानियां।
सामाजिक रूप से शक्तिशाली?
हाँ, मतलब इनकी ताकत इनके सच होने में नहीं बल्कि समाज के लिए इनके मायने में है। फिर वो हमें ले जाती हैं ग्रीक रचना मिथकों तक। जैसे हिसियोड की थियोगोनी है जिसमें दुनिया कैसे बनी, देवता कैसे आए, उनका राज कैसे कायम हुआ, ये सब है। ये दिखाती हैं कि कैसे इन कहानियों ने दुनिया को समझने का एक ढांचा दिया लोगों को।
ठीक है, तो पहले मिथक की परिभाषा समझी, फिर दुनिया की शुरुआत, उसके बाद?
उसके बाद हम चलते हैं रोमन दुनिया में, खास तौर पर कवि ओविड की जो मशहूर किताब है मेटामॉर्फोसिस, उसके जरिए। यहाँ हम देखते हैं कि रोमनों ने ग्रीक मिथकों को कैसे लिया और अपने रंग में रंगा। ओविड की कहानियों में किरदारों के मन की उथल पुथल, बदलाव, मतलब रूप बदलने का जो थीम है, और इंसानों देवताओं के बीच के जो अक्सर दुखद रिश्ते हैं, उन पर ज्यादा जोर है। ये दिखाता है कि मिथक कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, उन्हें हर जमाना अपने हिसाब से देखता है, बदलता है।
मतलब कहानी तो वही रही पर फोकस बदल गया, भावनाओं और बदलाव पर ज्यादा ध्यान। ये तो दिखाता है कि हर संस्कृति का अपना नजरिया होता है।
बिल्कुल, फिर किताब आगे बढ़ती है और नायकों की हमारी जो बनी बनाई छवि है ना, उस पे सवाल उठाती है। हेरोक्लीज यानी हरक्यूलीज या ओडिसियस जैसे हीरो, वो सिर्फ वीर नहीं थे, उनमें गहरी कमियां थीं, वो हिंसक भी हो सकते थे।
अच्छा।
हाँ, तो किताब पूछती है कि भाई ऐसे जटिल किरदारों का समाज में क्या रोल था। फिर वो देखती है कि धर्म में, रीति रिवाजों में, कला में, राजनीति में इन मिथकों का इस्तेमाल कैसे होता था। जैसे एथेंस का पार्थेनन मंदिर है, वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं थी, बल्कि मिथकों के जरिए किया गया एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट था।
और क्या ये सब बातें आज से भी जुड़ती हैं?
हाँ, और यही किताब का असली कमाल है। जो आखिरी हिस्से हैं उनमें मोरेलिस दिखाती हैं कि ये मिथक मरे नहीं हैं। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण से लेकर आज की फिल्मों में, विज्ञापनों में, राजनैतिक नारों में, नारीवादी बहसों में, हर जगह ये कहानियां और उनके पैटर्न जिंदा हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो किताब का निचोड़ या कहें कि उसका मकसद ये है कि मिथकों को आलोचनात्मक नज़र से पढ़ना सीखो, समझो कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और उनका आज क्या मतलब है।
चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहला आइडिया जो मुझे बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी लगा, मिथक सिर्फ कहानी नहीं, एक सामाजिक शक्ति है।
हम तो अक्सर मिथक शब्द का इस्तेमाल किसी झूठी बात के लिए करते हैं, है ना? जैसे कह दिया, अरे ये तो बस एक मिथक है। क्या मोरेलिस इससे सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसी आम समझ को तो चुनौती देती हैं। उनके लिए मिथक को सिर्फ झूठी कहानी कह देना मतलब उसकी असली ताकत और उसके सामाजिक रोल को नज़रअंदाज करना है। वो कहती हैं कि मिथक असल में सामाजिक रूप से शक्तिशाली पारंपरिक कहानियां हैं। मतलब बात ये नहीं कि वो सच हैं या झूठ, बात ये है कि वो किसी समुदाय के लिए मायने रखती हैं, उन्हें दुनिया समझने में मदद करती हैं, उनके मूल्य तय करती हैं। ये एक तरह का विमर्श है, मतलब सोचने और बात करने का एक तरीका।
अच्छा, विमर्श।
हाँ, तो किसी कहानी को मिथक उसकी सच्चाई नहीं बनाती, बल्कि समाज में उसका असर और उसका मकसद बनाता है।
ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब मिथक समाज को एक तरह से गढ़ने का औजार है।
और इसी से जुड़ा दूसरा विचार आता है, मिथकों का राजनैतिक इस्तेमाल। क्या ये सिर्फ पूजा पाठ या मनोरंजन तक ही थे? इनका राजनीति से क्या लेना देना भला? अरे, बहुत गहरा लेना देना था। ये मोरेलिस की किताब का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वो दिखाती हैं कि मिथक अक्सर राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं, अपनी ताकत जताने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए। सबसे जबरदस्त उदाहरण है एथेंस का पार्थेनन मंदिर। आपने देखा होगा शायद, उसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियां बनी हैं।
हाँ, कुछ लड़ाइयों की मूर्तियां शायद।
बिल्कुल, जैसे ग्रीक वीरों का सेंटोर, आधे इंसान आधे घोड़े, या अमेजन, लड़ाकू महिलाएं से लड़ना। ये सिर्फ सुंदर कलाकृतियां नहीं थीं।
तो फिर इनका असली मकसद क्या था? क्या संदेश दे रही थीं?
ये मूर्तियां एक सोचा समझा राजनीतिक प्रचार थीं। देखिए, एथेंस ने उस समय शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को हराया था, तो ये मूर्तियां उसी जीत का जश्न थीं और उसे सही ठहराने का एक तरीका भी। ये दिखा रही थी कि कैसे सभ्य ग्रीक, जिसका मतलब था एथेंस, ने बर्बर अव्यवस्थित ताकतों, जिनका प्रतीक सेंटोर या अमेजन थे पर इशारा असल में फारस की तरफ था, को हराया।
अच्छा।
हाँ, ये मिथकों के जरिए अपनी ताकत और अपनी श्रेष्ठता का ऐलान था। और ये पैटर्न बार बार दिखता है इतिहास में। रोमन सम्राट खुद को हरक्यूलिस जैसा दिखाते थे, यहाँ तक कि नाजी जर्मनी ने भी अपनी विचारधारा फैलाने के लिए क्लासिकल इमेजिनरी का इस्तेमाल किया। तो मिथकों का एक बहुत बड़ा रोल सत्ता का समर्थन करना भी रहा है।
कमाल है, यानी कला और कहानी मिलकर प्रोपेगेंडा का काम कर रहे थे। अब आते हैं तीसरे विचार पर, जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया। नायक हमेशा हीरो नहीं होते।
हम तो हेराक्लीस जैसे नायकों को मतलब सुपर हीरो की तरह देखते आए हैं, बहुत ताकतवर, बहादुर, दुनिया बचाने वाले।
हाँ,
ये छवि बहुत मजबूत है हमारे मन में। लेकिन मोरेलिस हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती हैं। वो इन नायकों की जटिलता पर जोर देती हैं। हेराक्लीस बेशक महान काम करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, लेकिन वो भयानक गुस्से में आकर अपनी ही बीवी बच्चों को मार डालते हैं।
ओहो।
और ओडिसियस, जो बहुत चालाक और बुद्धिमान माने जाते हैं, वो क्रूर भी हैं, धोखेबाज भी हैं और दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले भी।
तो फिर उन्हें नायक क्यों माना गया? अगर उनमें इतनी बुराइयां थीं, तो समाज में उनका रोल क्या था? हीरो क्यों थे वो?
शायद उनका रोल सीधे सीधे आदर्श बनने का था ही नहीं। मोरालेस का तर्क है कि ये नायक समाज के अंदर के तनावों और विरोधाभासों को दिखाते थे, जैसे सभ्यता और जंगलीपन के बीच की जो खींचतान है, या फिर मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी की परिभाषा क्या हो, क्या उसमें सिर्फ ताकत और बुद्धि है या गुस्सा और क्रूरता भी शामिल है। इन नायकों के जरिए समाज शायद इन मुश्किल सवालों से जूझता था। वो एक तरह से समाज के लिए सोचने और बहस करने के पात्र थे, सिर्फ पूजने के लिए नहीं।
ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब नायक सिर्फ प्रेरणा के स्रोत नहीं बल्कि समाज के लिए आत्ममंथन का जरिया भी थे। अब चौथे विचार पर आते हैं जो जेंडर से जुड़ा है, मिथकों में लिंग और शक्ति का खेल। आपने बताया कि मोरालेस इस पर खास ध्यान देती हैं, तो इन कहानियों में महिलाओं को कैसे पेश किया गया है, उनका क्या रोल है?
अक्सर बहुत ही जटिल और कह सकते हैं समस्याग्रस्त तरीके से मोरालेस दिखाती हैं कि जब महिलाओं को शक्तिशाली दिखाया जाता है तो उन्हें अक्सर खतरनाक या राक्षसी बना दिया जाता है। मेडूसा का उदाहरण लीजिए, जिसके बालों की जगह सांप थे और जिसकी नजर लोगों को पत्थर बना देती थी। ये स्त्री शक्ति का एक डरावना रूप है जिसे पुरुष नायक यानी पर्सियस को हराना जरूरी था। या फिर मेडिया का किस्सा, एक ताकतवर जादूगरनी जिसने नायक जैसन की बहुत मदद की, पर जब जैसन ने उसे धोखा दिया तो उसने बदला लेने के लिए अपने ही बच्चों को मार डाला। यहाँ भी शक्तिशाली महिला नियमों को तोड़ती है और आखिर में विनाशकारी बन जाती है।
और उन कहानियों का क्या जिनमें देवता महिलाओं का अपहरण करते हैं या उन पर हिंसा करते हैं, कई बार उन्हें बड़े रोमांटिक अंदाज में पेश किया जाता है?
बिल्कुल, और मोरालेस इसी रोमांटिक नजरिए को पूरी तरह से खारिज करती हैं। वो कहती हैं कि ये साफ तौर पर शक्ति के दुरुपयोग और यौन हिंसा की कहानियां हैं। वो बताती हैं कि ओविड जैसे कवि अक्सर इन कहानियों को सुनाते हुए पीड़ित महिलाओं के दर्द और ट्रॉमा पर फोकस करते हैं, जैसे अपोलो से बचने के लिए डैफनी का लॉरल का पेड़ बन जाना या ज्यूस की वासना की वजह से आयो का गाय बन जाना। ये कहानियां उस पितृसत्तात्मक समाज की सच्चाई दिखाती हैं जहां महिलाओं की स्थिति कितनी असुरक्षित थी। तो इन कहानियों का एक रोल उस समय के जेंडर समीकरणों को, उनकी असलियत को दिखाना भी है।
ये वाकई एक जरूरी सुधार है हमारी समझ में। अब पांचवां और आखिरी मुख्य विचार, कहानियां वही मायने नए, मिथकों का पुनर्जन्म। इसका मतलब है कि ये कहानियां समय के साथ बदलती रहती हैं, उनका अर्थ फिक्स नहीं है।
डिसेप्शन कहते हैं, मतलब अलग अलग समय और संस्कृति में इन कहानियों को कैसे समझा गया, कैसे अपनाया गया और कैसे उनका मतलब बदला गया। हर पीढ़ी इन कहानियों को अपनी नज़र से देखती है और अपने मतलब निकालती है। ओविड ने ग्रीक मिथकों को रोमन रंग दिया, उनमें मनोवैज्ञानिक गहराई डाली। सदियों बाद फ्राइड ने ओडिपस की कहानी का इस्तेमाल इंसान के अचेतन मन को समझने के लिए किया।
और आज के ज़माने में ये कैसे हो रहा है?
आज भी ये जोरों पर है। आप देखिए, नारीवादी लेखक इन कहानियों को महिलाओं के नज़रिए से दोबारा लिख रहे हैं। जैसे मार्गरेट एटवुड का उपन्यास है द पेनिलोपियाड, जो ओडिसी की कहानी को पेनिलोपी की आवाज़ में सुनाता है।
अच्छा।
हाँ, फिल्में इन मिथकों को नए संदर्भों में ढाल रही हैं, जैसे कोएन ब्रदर्स की ओ ब्रदर वेयर आर्ट थाउ, जो ओडिसी पर ही आधारित है।
विज्ञापन इन किरदारों का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है ये मिथक एक तरह का कच्चा माल है जिसे हर जमाना अपनी जरूरत और सोच के हिसाब से इस्तेमाल करता है। इनका रोल लगातार बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं है।
तो अगर इस पूरी बातचीत और किताब से कुछ मुख्य संदेश निकालने हो, कुछ की टेकअवेज, तो वो क्या होंगे? वो कौन सी बातें जो हमें खास तौर पर याद रखनी चाहिए?
पहली बात तो मेरे ख्याल से ये है कि मिथक पत्थर की लकीर नहीं है, वो जिंदा कहानियां हैं। उनका अर्थ, उनका रोल समाज और समय के साथ बदलता है। उन्हें किसी एक सही अर्थ में बांधना गलत होगा।
ये बहुत अहम है। और दूसरी
कि मिथक कभी मासूम या सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, उनमें अक्सर सत्ता की राजनीति छिपी होती है। उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि विचारों को फैलाना, सत्ता को सही ठहराना या कभी कभी उसे चुनौती देना भी हो सकता है। पार्थेनन वाला उदाहरण याद रखिए।
बिल्कुल। और नायकों के बारे में क्या सीखा?
तीसरा संदेश यही है, क्लासिकल नायक आज के सुपरहीरो जैसे सरल नहीं थे। वो जटिल थे, विरोधाभासी थे। उनका रोल समाज के मुश्किल सवालों और अंदरूनी तनावों को सामने लाना था, खासकर मर्दानगी और सभ्यता जैसी चीजों को लेकर। और चौथा, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मिथकों को समझने के लिए जेंडर और पावर के लेंस से देखना बहुत जरूरी है। ये कहानियां बताती हैं कि कैसे लैंगिक भूमिकाएं गढ़ी गईं और कैसे ये विचार आज तक हमारे समाज में कहीं ना कहीं मौजूद हैं।
ये सारी बातें तो हमारे अपने समाज पर भी लागू होती हैं, है ना? हमारे यहाँ भी रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की कितनी अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, किरदारों पर लगातार बहस चलती रहती है। ये दिखाता है कि मिथकों का ये स्वभाव, उनका ये सामाजिक रोल शायद दुनिया भर में एक जैसा ही है। किताब में ज़रूर कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो खास तौर पर दिमाग में अटक जाते हैं। क्या आप मोरालेस के कुछ सबसे असरदार तर्कों को हमारे साथ साझा कर सकती हैं, मतलब उनके विचारों का सार?
हाँ हाँ बिल्कुल, सीधे कोट करना तो शायद मुश्किल हो, पर उनके मुख्य तर्कों का सार कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पहला, मिथक झूठी कहानी नहीं है बल्कि सामाजिक रूप से शक्तिशाली पारंपरिक कहानी है। उसकी सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी है समुदाय के लिए उसका महत्व और उसका मकसद। ये हमें मिथकों को सिर्फ सच या झूठ के चश्मे से देखने से रोकता है।
बिल्कुल। दूसरा, पार्थनन पर। पार्थनन की मूर्तियाँ सिर्फ सजावट नहीं है, वे राजनीतिक मिथक निर्माण का एक सोचा समझा काम है। वो सभ्यता बनाम बर्बरता की कहानी का इस्तेमाल करके एथेंस की शाही ताकत को सही ठहराती हैं। ये साफ दिखाता है कि कला और मिथक कैसे सत्ता के लिए काम कर सकते हैं।
तीसरा, मिथकों के बदलते स्वभाव पर एक बहुत दिलचस्प बात है। किसी मिथक का हर नया रूप, चाहे वो ओविड की कविता हो या आज का कोई नारीवादी उपन्यास, असल में उसे बताने वाले के अपने समय की कहानी ज्यादा कहता है बजाय प्राचीन कहानी के। हर पीढ़ी इन कहानियों में अपने सवाल और अपने जवाब ढूंढती है।
वाह, मतलब हम इन कहानियों के जरिए असल में खुद को ही समझ रहे होते हैं। और नायकों वाली बात, वो क्या थी?
हाँ, चौथा, नायकों की जटिलता पर। क्लासिकल नायक शायद ही कभी सीधा सरल आदर्श होता है। हेराक्लीज और अखिलीज जैसे पात्र गहरे विरोधाभासी हैं। वे हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करते हैं कि किसी समाज के लिए वीरता की परिभाषा आखिर है क्या। ये नायकों को ज्यादा इंसानी और विचार करने लायक बनाता है।
ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, नो डाउट, पर सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है या इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है?
नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इसका सीधा असर है कई तरीकों से। पहला, ये हमें बेहतर मीडिया कंज्यूमर बनाता है, ज्यादा जागरूक। जब हम फिल्में देखते हैं या विज्ञापन देखते हैं या नेताओं को सुनते हैं तो हम उनमें छुपे हुए मिथकीय पैटर्न पहचान सकते हैं। हीरो की कहानी, अच्छे बुरे की लड़ाई, हम समझ सकते हैं कि कैसे ये पैटर्न हमारे जज्बातों और विचारों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
हाँ, विज्ञापनों में तो हीरो का इस्तेमाल खूब होता है।
जी बिल्कुल,
बाइक का हीरो, साबुन का हीरो। और राजनीति में?
राजनीति में भी यही होता है। जब कोई नेता किसी सुनहरे अतीत का मिथक गढ़ता है या राष्ट्र को फिर से महान बनाने की बात करता है तो हम समझ सकते हैं कि वो पहचान बनाने और अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए मिथकों का इस्तेमाल कर रहा है। हम इन दावों पर ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस कहानी का असली मकसद क्या है।
और जेंडर वाली बात, जो मिथकों में महिलाओं के चित्रण के बारे में सीखी, उसका क्या?
वो हमें अपने आसपास फैली लैंगिक रूढ़ियों, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप्स पर सवाल उठाने में मदद करती है। कई बार हमें लगता है ना कि कुछ बातें हमेशा से ऐसी ही चली आ रही हैं, लेकिन मिथकों का विश्लेषण दिखाता है कि ये विचार कैसे समय के साथ बने हैं, गढ़े गए हैं। ये हमें सिखाता है कि इन विचारों को चुनौती दी जा सकती है, कि महिलाओं या पुरुषों का कोई तयशुदा रोल नहीं है।
और व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर कोई फायदा?
बिल्कुल। देखिए, ये प्राचीन कहानियां हमें अपने जीवन के अनुभवों को समझने के लिए एक भाषा, एक रूपक दे सकती हैं। जैसे संघर्ष, प्यार, नुकसान, यात्रा, ओडिसियस की घर वापसी की लंबी मुश्किल यात्रा, ये हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलों का आईना बन सकती है, है ना? ये आत्मचिंतन में मदद कर सकती हैं। और हाँ, जाहिर है कला, साहित्य, फिल्में, ये सब हमें ज्यादा गहरे स्तर पर समझ आने लगती हैं जब हम उनके पीछे छुपे इन मिथकीय धागों को पहचान पाते हैं।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही इस किताब से? मेरे लिए तो, जैसा मैंने कहा, ये समझना कि मिथक कितने ज्यादा राजनीतिक हो सकते हैं और कैसे पार्थेनन जैसी महान कलाकृति भी एक तरह का प्रोपेगेंडा थी, ये सच में आंखें खोलने वाला था।
मेरी ये शायद सबसे अहम बात ये रही कि मिथक कितने लचीले और जिंदा होते हैं। वो म्यूजियम में रखी कोई मरी हुई चीजें नहीं है। उनकी ताकत इसी बात में है कि उन्हें बार बार नए तरीकों से कहा जा सकता है, उनका रोल और मतलब बदला जा सकता है।
और ये समझना कि जब हम इन पुरानी कहानियों पर बात करते हैं या इन्हें दोबारा लिखते पढ़ते हैं तो असल में हम आज के समाज, आज की राजनीति, आज के जेंडर समीकरणों पर ही बहस कर रहे होते हैं। ये इन कहानियों को हमारे लिए हमेशा, मतलब हमेशा, प्रासंगिक बना देता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।